दिन भर 9 अगस्त दिन शुक्रवार, मैं हूँ सारिका सिंह। श्रीनगर में जुमे की नमाज के लिए कुछ जगहों पर दी गई कर्फ्यू में ढील। घरों में बंद आम लोगों ने बीबीसी को बताया अपना हाल।
अच्छा तो मुश्किल।
बताएंगे अनुच्छेद 370 के प्रावधान खत्म होने पर क्या कहते हैं जम्मू के लोग।
यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम थी हमारी स्टेट में, सरकार ने जो सारा 370 उठाई है वो बहुत बढ़िया है।
और अल्मोड़ा की एक लड़की कैसे बनी पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी, सुनिएगा विवेचना में।
जब उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए इन इकोनॉमिक्स किया तो वो अपने क्लास में अकेली लड़की थी।
पर पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू एवं कश्मीर की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी ने जुमे की नमाज अदा की। 5 दिन से भारत प्रशासित कश्मीर में भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच बंद जैसा माहौल है। अधिकारियों ने कहा था कि जुमे की नमाज के मौके पर थोड़ी ढील दी जाएगी। कुछ लोग छोटी मस्जिदों में नमाज पढ़ने जा सके और संचार माध्यम में भी सुधार के संकेत मिले हैं, लेकिन श्रीनगर की सबसे बड़ी मस्जिद बंद है। सोमवार को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म किया था, तब से ही कर्फ्यू जैसे हालात हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोल्ही ने कहा,
The government is monitoring the situation. Today, some restrictions have been lifted so that people.
सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। आज प्रतिबंधों में कुछ ढील दी गई है ताकि सामान्य जिंदगी पटरी पर लौट सके। लोग अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, पेट्रोल स्टेशन चालू हैं, रोजमर्रे की जरूरतें पूरी हो रही हैं। लेकिन साफ तौर पर कहा जाए तो प्रतिबंध पूरी तरह कब हटेंगे इस बारे में केवल सरकार ही तय कर सकती है। हमारे जहन में है कि ईद करीब है और लोग ईद मनाने की स्थिति में होंगे। ये थे नलिन कोहली के शब्द। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो भारत के अंदरूनी मसलों से दूर रहे। भारत ने इस्लामाबाद पर कश्मीर मामले को लेकर दुनिया में गलत फहमी पैदा करने का आरोप लगाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के दिल्ली के फैसले के बाद पाकिस्तान को सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। पाकिस्तान ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए दोनों देशों के बीच चलने वाली अंतिम ट्रेन सेवा भी रद्द कर दी है। रवीश कुमार ने इसे पाकिस्तान की एक तरफा कार्रवाई बताया है। भारत के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी हिस्से में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है। केरल के मुन्नार जिले में भूस्खलन के कारण 20,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राज्य के कोचीन एयरपोर्ट पर उड़ानें रद्द कर दी गई हैं क्योंकि पेरियार नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। महाराष्ट्र और कर्नाटक भी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। सैकड़ों गांवों में बिजली और पीने का पानी नहीं है। इन इलाकों में 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई है जबकि हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। उन्नाव रेप मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ दिल्ली की एक सेशन कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धाराओं में कई मामले दर्ज किए गए हैं। सेंगर पर बलात्कार और आपराधिक साजिश समेत आईपीसी की कई धाराओं में मामले दर्ज हैं। हमारे सहयोगी सुचित्र मोहंती ने बताया कि मामले की सुनवाई 45 दिन में पूरी होनी है।
इस केस में सुप्रीम कोर्ट का अगस्त 1 तारीख का ऑर्डर है कि इसमें 45 दिन के अंदर ट्रायल को खत्म कर दिया जाना चाहिए। पॉक्सो का जो एक्ट है 3 और 4 भी उनके खिलाफ लगाया है। पॉक्सो के अलावा जो धाराएं लगाए गए उन 376(1) की धारा लगाई गई और 120(b) यानी कि क्रिमिनल कंस्पिरेसी लगाया है। उसके अलावा और 2-3 सेक्शन भी इंडियन पिनल कोड के लगाए हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कम से कम सजा जो है 7 साल की हो सकी है।
जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी सुचित्र मोहंती। दुनिया की अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फॉक्सकॉन ने माना है कि उसने चीन में गैर कानूनी तरीके से अपनी फैक्ट्री में हजारों स्कूली बच्चों से काम करा रही थी। इस फैक्ट्री में अमेजॉन की एलेक्सा गैजेट जिसे बनाया जा रहा था। ब्रिटेन के गार्डियन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार 16 से 18 साल की उम्र के 1,000 छात्रों को डेडलाइन पर काम पूरा करने के लिए लगाया गया था। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार को हजारों प्रदर्शनकारी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शांतिपूर्ण रैली निकाल रहे थे। इस बीच हांगकांग के नेता ने कहा है कि इन प्रदर्शनों से अर्थव्यवस्था को सुनामी जैसा नुकसान पहुंच रहा है। बीबीसी समाचार।
दिनभर कार्यक्रम के साथ मैं हूं सारिका सिंह। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ बीबीसी हिंदी की वेबसाइट और ऐप पर भी लाइव सुन सकते हैं। सबसे पहले बात कश्मीर की, जहां से खबर आई कि 5 दिनों के बाद वहां कर्फ्यू में ढील दी गई। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने के बाद लगातार कश्मीर में कर्फ्यू के हालात थे, पर आज वहां जुमे की नमाज अदा की गई। कई मस्जिदों में लोग नमाज अदा करने पहुंचे। 2 दिन बाद ईद है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने संबोधन में बधाई भी दी थी। उम्मीद की जा रही है कि वहां कर्फ्यू में थोड़ी और ढील दी जाएगी ताकि लोग ईद के लिए खरीदारी कर सकें। श्रीनगर के मौजूदा हालात के बारे में हमें ज्यादा जानकारी दी बीबीसी संवाददाता आमिर पीरजादा ने।
आज जुम्मे का दिन था, फ्राइडे प्रेयर्स का वक्त था। धीरे धीरे जब नमाज का वक्त नजदीक आया, हमने पाया कि उस कर्फ्यू में लोगों की मूवमेंट में ढील दी जा रही थी, लोग चल पा रहे थे। एंड मेजॉरिटी ऑफ जितने भी मॉस्क है श्रीनगर की हम बात करें, मेजॉरिटी जगहों पे नमाज पढ़ी गई, एक्सेप्ट जो श्रीनगर की मेन जामा मस्जिद है ओल्ड सिटी में, वो आज भी ब्लॉक थी, बंद थी, वहाँ पे किसी को एंटर करने का इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन श्रीनगर में नमाजें पढ़ी गई। हम कश्मीर के बाकी इलाकों की बात नहीं कर सकते, नॉर्थ हो या साउथ हो, क्योंकि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन, कोई कम्युनिकेशन नहीं है कि वहाँ हम वहाँ से इन्फॉर्मेशन न्यूज़ गैदर कर सके। नमाज के बाद चीज़ें सब अंडर कंट्रोल रहा, सामान्य रहा, कहीं पर प्रोटेस्ट हमें नहीं दिखा, क्योंकि हम सारे सिटी में नहीं जा पाए, लेकिन हम जहाँ जहाँ गए कहीं पे एक गली पे कुछ यूथ हमें दिखे जो स्टोन फेल्ट कर रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस पे, लेकिन ज्यादातर जगहों पे चीजें अंडर कंट्रोल और ठीक ही रही।
यहाँ के दिल्ली के अखबारों में भी ये बात चल रही थी कि ईद को लेकर जो तैयारियां हैं वहाँ पर, उसको लेकर कर्फ्यू में ढील दी जा सकती है।
तो अभी ये है कि 2:30 बजे तक लोगों की मूवमेंट थी, लेकिन जिस हिसाब से हम सिक्योरिटी प्रेजेंस अभी देख रहे हैं, उस हिसाब से नहीं लग रहा कि अभी कर्फ्यू में कोई डील मिलेगी। लेकिन ईद अभी 2 दिन दूर है, जो कि सोमवार को ईद है, तो अभी यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स लोगों के पास सैटरडे भी है, संडे भी है, तो यहाँ पे जहाँ तक आज के हालात देखे गए तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन संडे या सैटरडे को 1 या 2 घंटे की कर्फ्यू में डील दे सकती है।
इसका मतलब ये माना जाए आमिर कि जिस तरह से ईद मनाई जाती है, लोग खुलकर बाहर निकलते हैं, मिलते जुलते हैं अपने रिश्तेदारों से, वो वाला आलम इस बार नहीं होगा।
वो तो हरगिज़ ही नहीं होगा, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस है हर जगह पे, हर गली पे, बार्बर्ड वायर जो तारे हैं वो बैरिकेड्स है, वो हर सड़क पे हर 50-100 मीटर की दूरी पे है। तो वो जो पहले ईद होती थी जिसमें खुशियां होती थी, लोग अपनों से मिलते थे, नमाज पढ़ने जाती थी, वो तो इस बार हम मेरे हिसाब से जो मैं पिछले 5 दिनों से यहाँ पे देख रहा हूँ, उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है कि क्या वैसा होगा।
इसके अलावा आप हॉस्पिटल गए थे, आपने वहाँ का जायजा लिया, क्या कुछ देखा आपने?
कल हम कश्मीर के मेन हॉस्पिटल किम्स में गए, जहाँ पे हमने सुप्रिंटेंडेंट से बात की, उन्होंने हमें बताया कि पिछले 4 दिनों में उनके पास 10 पैलेट और टीयर गैस इंजर्ड पर्सन आए थे, जिसमें 3 क्रिटिकल थे और 7 को उसी दिन रिलीज किया गया था। फिर उसके बाद हम गए दूसरे मेन मेजर हॉस्पिटल में, जो JVC बिमिना में है। JVC बिमिना में हमें ये बताया गया डॉक्टर्स ने कि वहाँ पे अब तक 6 पैलेट विक्टम्स आए थे, लेकिन जो माइनर्स थे, उतना सीरियस कुछ नहीं था। लेकिन उन्हीं डॉक्टर्स ने हमें और एक शॉकिंग खबर दी कि उन्होंने बोला कि एक लोकल सिविलियंस जो श्रीनगर में काम कर रहे थे, जब हालात खराब हुए वो बस अपने घरों की ओर, नॉर्थ कश्मीर की ओर जा रही थी, बिमिना में प्रोटेस्टर्स ने, स्टोन पेल्टर्स ने उस बस को घेरा, उस पर स्टोन पेल्टिंग की, तो जब ड्राइवर ने उस बस से कंट्रोल खो दिया और बस पूरी तरह से पलट गई, तो वहाँ पे ऑन स्पॉट 3 लोगों की, सिविलियंस की मौत होती है और 27 से ज्यादा जख्मी JVC हॉस्पिटल लाए जाते हैं।
मौजूदा हालात के बीच कश्मीर के लोग क्या कह रहे हैं, ये जानने के लिए बीबीसी संवाददाता योगिता लिमय ने पुराने श्रीनगर की तंग गलियों में रह रहे एक परिवार से मुलाकात कर उनके हालात को समझने की कोशिश की।
बड़ी मुश्किल है, ना बच्चे बाहर निकल पा रहे हैं, ना हम। इस मुश्किल घड़ी में हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने हमें मरने के लिए छोड़ दिया है।
आशा हकीम का घर श्रीनगर के डाउनटाउन की पुरानी तंग गलियों में है। वो और उनके पति एक कमरे के घर में रहते हैं। फिलहाल फोन लाइनें कटी हुई हैं। बाहरी दुनिया से उनका संपर्क कटा हुआ है और उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है। उनके पति अब्दुल हकीम अपनी नाराजगी इन शब्दों में बयां करते हैं।
भारत ने जो किया है वो अपने लिए किया है, हमारे लिए नहीं। उन्होंने हमें घुटने के लिए छोड़ दिया है, हमें बर्बाद कर दिया है।
अवाम उसको रुख खास।
उनके बेटे मोहम्मद अशरफ की राय भी उनसे जुदा नहीं है। वो भी गुस्से और हताशा से भरे हैं।
हम जेल से भगते रहे इधर, कहाँ आ जाते? आप देखिए अभी हम घर में चार दिन से बैठे हैं, मालूम भी नहीं है, दिन रात इधर फोर्सेस बाहर लगा हुआ है, नमाज पढ़ने के लिए हमको नहीं देने देते इधर। क्या पता है क्या होने वाला, फिर मतलब इनको बोलो कर्फ्यू हटाओ, तब देखेगी कि माहौल क्या होगा इधर। सवाल ही नहीं कि हालात ठीक हो गए इधर। ये जो हमारे ऊपर जुल्म हुआ इधर, ये एक पकड़ थी मतलब कश्मीरी की, इसकी वजह से और हालात ख़राब हो जाएगी अगर मतलब ये मतलब हकीकत मतलब उठेगा। यहाँ पे हालात मतलब ठीक नहीं होंगे, ये हमारा मतलब मेरा माइंड है। ये
कश्मीर एक किले में तब्दील हो चुका है। हजारों की तादाद में भारतीय सुरक्षा बलों के जवान श्रीनगर की सड़कों और हाईवे पर मौजूद हैं। पुलिस की गाड़ियां लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को लगातार कर्फ्यू के दौरान घरों के अंदर रहने की हिदायत दे रही हैं। बीबीसी की टीम से पहचान पत्र और कर्फ्यू पास मांगा गया और भरोसा होने के बाद ही हमें आगे जाने दिया गया। सवाल ये भी उठ रहा है कि जब कर्फ्यू हटेगा तब क्या होगा।
पर कश्मीर से अलग हुए जम्मू में माहौल भी अलग है, वहां के लोग क्या कह रहे हैं ये जानने की भी बीबीसी ने कोशिश की।
प्रधानमंत्री साहब ने एक चीज को भूल दिया कि हम जम्मू ने इतना मैंडेट दिया उनको, मैं चाहता हूं कि जम्मू की भी उतनी केयर की जाए जितना कि कश्मीर की केयर की जाती है। हर चीज कश्मीर सेंट्रिंग नहीं होनी चाहिए जैसे पहले होती रही है।
52 या 53 के आसपास इन्होंने पंजाब से लाए थे, काफी सारे लोग लाए थे विद द कंडीशन कि इनको यहाँ पे परमानेंट स्टेटस दिया जाएगा, पर जो भी 370 की वजह से गवर्नमेंट ने आज तक इनको नहीं दिया था, उसका रीजन ये हुआ कि उसकी वजह से उनमें थोड़ा सा मुखालफत भी आई और उन लोगों को लगा कि हम लोग हिंदुस्तान के निवासी नहीं है, और इस स्टेप से उनको आज ये परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के भी बन गए हैं, पूरे हिंदुस्तान के बन गए।
जो भी करा मोदी सरकार ने बहुत बढ़िया करा। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम थी हमारी स्टेट में जो कि नहीं ठीक से कर पा रहे थे हमारे स्टेट के जो चुने हुए नुमाइंदे थे। सरकार ने जो धारा 370 उठाई है वो बहुत बढ़िया है, हम इसके समर्थन में हैं।
डीलिमिटेशन से एक तो है कि सीटें बढ़ जाएंगी जम्मू की तो पावर भी नेचुरली बढ़ेगी, तो उससे जम्मू वालों को फायदा होगा।
उन्होंने स्टेटहुड के लिए एक कमिटमेंट किया है कि हम थोड़े दिनों में इलेक्शन के बाद जैसे ही प्रोसेस नॉर्मल होते हैं तो उसके बाद यूटी को हम स्टेटहुड का एक वो द्वारा स्टेटस दे देंगे। तो हमें लगता है कि हम उनको एक मौका मिलना चाहिए इन सारी एक्सरसाइज को स्टेट में करने का, जिससे हम देखें कि क्या रिजल्ट आते हैं। पिछले काफ़ी टाइम से हम इन चीज़ों को देख रहे हैं कि जो जम्मू के लोग हैं उनकी जो एस्पिरेशंस हैं उनको फुलफिल नहीं किया जाता, चाहे वो जॉब को लेके है या चाहे किसी भी चीज़ को, जैसे कोई जम्मू में एम्स का ही आना था या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक प्रपोजल था, तो हमें हर चीज़ के लिए पहले एक एजिटेशन करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है उसके लिए।
कश्मीर से इतर जम्मू के लोगों की भावनाएं थोड़ी अलग हैं।
बीबीसी इंडिया बोल।
जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करके भारत सरकार ने ऐतिहासिक भूल को सुधारा या इस फैसले से दक्षिण एशिया में अस्थिरता और हिंसा का नया दौर शुरू हो जाएगा। इस बार इंडिया बोल में चर्चा अनुच्छेद 370 पर होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 10 अगस्त शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811 7000 या 1811027001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
हर जगह पानी ही पानी, उमड़ती नदियां और आफत में फंसी हजारों जाने। देश के कई इलाकों में फिलहाल यही मंजर है। महाराष्ट्र से लेकर केरल और कर्नाटक तक के राज्यों के लोग बाढ़ से बेहाल हैं। कर्नाटक और केरल में लगभग 33 लोगों की मौत की भी खबर है। इमरान कुरैशी इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं।
कर्नाटका के बेलगावी जिले के गोकाक तालुक के कई गांव में बाढ़ का पानी इतने ऊंचाई पर है कि इलेक्ट्रिक पोल भी एक छोटी लकड़ी की तरह दिखता है। कलर पक्षवाड़ी, मक्कलगिरी, बंसावाड़ी और आसपास के गांव से लोग गोकाक तालुक में ही राहत शिविर में आश्रय लिए हैं। उन्हें वहां सेनाकर्मी ले आए हैं। उनमें से एक गंगप्पा दासप्पा शिरशैल ने बीबीसी को बताया, हमारे गांव ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी घर पानी में बह गए हैं। हम तो इतना पानी नहीं देखे थे और हमारे गांव में बुजुर्ग लोग हैं जो शायद 100 साल के हैं, वो भी कहते हैं कि इस तरह का बारिश और पानी उन्होंने अभी तक देखा नहीं था। ये थे गंगप्पा दासप्पा श्रीशैल के शब्द। श्रीशैल का कहना था कि उनके गांव के करीब ही घटप्रभा और मारखंडा नदी मिलते हैं और हिटकल डैम से पानी भी छोड़ा गया था। श्रीशैल उन 95,000 लोगों में से हैं जो 470 राहत शिविरों में आश्रय लिए हैं। बेलगावी, बागलकोट, रायचूर जैसे जिलों में बाढ़ आ गया क्योंकि यहाँ भी बहुत तेज बारिश पिछले 3 दिनों से हो रही थी। कर्नाटका आपदा प्रबंधन के सेक्रेटरी टीएच अनिल कुमार ने बीबीसी को बताया, आज बहुत ही अहम दिन है क्योंकि उत्तर कर्नाटका के जिलों में बारिश थोड़ा कम हुआ है, लेकिन बारिश की तीव्रता दक्षिण जिलों में यानी कोडगु और तटीय जिले जैसे उत्तर कन्नड़ और दक्षिण कन्नड़ में बहुत बढ़ गई है। बेलगावी जैसे जिले में बारिश अगर एक और दिन कम हुआ तो शायद कुछ राहत मिल सकती है। ये थे टीएच अनिल कुमार के शब्द। कर्नाटका में 51 तालुक बाढ़ को झेल रहे हैं, जबकि केरला के 3 जिले कोड़िकोड, मलप्पुरम और वायनाड में 315 राहत शिविर बनाए गए हैं और करीब 23,000 लोगों को वहां रखा गया है। ये 3 जिले वही हैं जिन्हें पिछले साल इसी महीने ऐतिहासिक बाढ़ का सामना करना पड़ा था। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
और अब आज की विवेचना। हाल ही में दीपा अग्रवाल और तहमीना अजीज अयूब की एक किताब प्रकाशित हुई, द बेगम, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली की पत्नी राणा लियाकत अली के जीवन की कहानी को बहुत रोचक अंदाज में बयां किया। राणा लियाकत अली अल्मोड़ा के कुमाऊनी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई, पर पाकिस्तान बनने पर वो उस मुल्क की फर्स्ट लेडी बनी। राणा लियाकत अली की कहानी बयां कर रहे रेहान फजल आज की विवेचना में।
अमरीका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत जमशीद मार्कर कहा करते थे कि जब राणा लियाकत अली किसी कमरे में घुसती थीं तो वो अपने आप रोशन हो जाया करता था। एक बार ब्रिज के एक गेम के बाद जब लियाकत अली ने अपने नेता मोहम्मद अली जिना से कहा कि आप अपने अकेलेपन को देखते हुए दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते, तो जिना ने तपाक से जवाब दिया था, मुझे दूसरी राणा ला दो, मैं तुरंत शादी कर लूंगा। राणा लियाकत अली का जन्म 13 फरवरी 1905 को अल्मोड़ा में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम था आइरीन रूथ पंत। वो एक कुमायूनी ब्राह्मण परिवार से आती थीं जिसने बाद में ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। राणा लियाकत अली की जीवनी द बेगम की सह लेखिका दीपा अग्रवाल बताती हैं।
वो जरा भी दबने वाले लोगों में से नहीं थी। अब आप सोच लीजिए, उनका जन्म 1905 में हुआ था, ऐसे ज़माने में जहाँ लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था, घर के अंदर कन्फाइंड होती थी। वो किसी चीज़ से नहीं घबराती थी। शी वुड ऑलवेज टेक द इनिशिएटिव। जब उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए इन इकोनॉमिक्स किया तो वो अपने क्लास में अकेली लड़की थी। लियाकत अली खान की एक बायोग्राफी है, उसमें ये सब जिक्र है कि कैसे उनकी साइकिल के टायर पंक्चर कर देते थे। सोच लीजिए कि 1927-28 में कितनी लड़कियां साइकिल चलाती थीं लखनऊ में। ज़्यादातर लोगों ने मुझसे पूछा कि अच्छा कौन से सब्जेक्ट में किया, उन्होंने इंग्लिश में किया होगा, तो मैंने कहा नहीं, इकोनॉमिक्स में किया। वो भी अपने आप में एक बड़ी यूनिक चीज़ थी।
1871 में आइरीन पंत के दादा तारा दत्त पंत ने जब ईसाई धर्म अपनाया था तो पूरे कुमाऊं में तहलका मच गया था। उनके समुदाय ने इसका इतना बुरा माना था कि उन्हें घटा श्राद्ध की रीति के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे पुष्पेश पंत का ननिहाल भी उसी जगह था जहां आइरीन रूथ पंत का परिवार रहा करता था।
मैं जो अपने ननिहाल वाले मकान में 8-10 साल की उम्र में आज से 60 साल पहले रहता था, उनके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते थे कि ये नॉर्मन पंत साहब का मकान है जिनकी बहन पाकिस्तान के पीएम लियाकत अली खान साहब के ब्याही गई है, और वो चूंकि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ वाली बात थी, तो जो इज्जत नॉर्मन पंत साहब की थी वो अपने आप में बड़े लायक रहीन आज भी रहे होंगे, मगर उनको लोग पहचानते इरीन पंत के भाई के तौर पे थे। या कुछ लोगों को याद आता था कि उनके जो वालिद थे, उनके जो दादा परदादा थे, वो अल्मोड़ा के बहुत दकियानूस शहर के, वो जो शहर बहुत ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मिनिकल है, उसके वो बड़े माने जाने वैद्य थे। और ऐसे किसी आदमी ने जब ईसाइयत कबूल की थी तो एक तहलका उस कस्बे में मचा था। तो लोग उनकी बात करते थे कि ये वो कन्वर्ट नहीं थे ईसाइयत में जो अनुसूचित जाति के दलित थे और तब गए थे, तो खानदानी बामन थे, ऊंची नाक बड़ी धोती वाले जो ईसाई बने थे। तो पहले तो वही धक्का अल्मोड़ा बर्दाश्त करने में उसको 2 पीढ़ियां निकल गई। फिर जब उनकी बहन ने फिर एक धर्मांतरण कर लिया और मुसलमान बन गई, इस्लाम कबूल करके पाकिस्तान के पहले वजीर आजम से शादी कर ली, तो एक खुसूसियत, एक सुरखाब का पर और उन पर जा गया। और उनके बारे में जो कहानियां होती थी वो बड़ी मजेदार थी कि वो भूरे साहब अपने इस तरह के थे कि सिर्फ बीबीसी सुना करते थे, आप सुन के खुश होंगे, अंग्रेजों की तरह टोस्ट बटर का ब्रेकफास्ट करते थे, घूमने अकेले निकलते थे, क्योंकि उन्हें शायद लगता था कि अल्मोड़े के बामन उन्हें बामन नहीं समझेंगे अपना, जाहिर है 3 पीढ़ी से क्रिश्चियन थे।
उस समय के अल्मोड़ा के दकियानूसी समाज में कथित रूप से आधुनिक पंत बहने न सिर्फ पूरे शहर की चर्चा का विषय हुआ करती थी बल्कि लोग उनसे रश्क भी करते थे। मशहूर उपन्यासकार शिवानी की बेटी इरा पांडे उनकी जीवनी दिद्दी में लिखती हैं।
मेरे नाना के बगल का घर डैनियल पंत का था जो कि ईसाई थे, लेकिन एक जमाने में वो मेरी माँ की तरफ से हमारे रिश्तेदार हुआ करते थे। हमारे दकियानूसी नाना ने उनकी दुनिया को हमारी दुनिया से अलग करने के लिए हमारे घरों के बीच एक दीवार बनवा दी थी। हमें सख्त हिदायत थी कि हम दूसरी तरफ देखें भी नहीं। मेरी माँ शिवानी ने लिखा था, उनके घर में जायकेदार गोश्त बनने की पागल कर देने वाली महक हमारे बोरिंग ब्राह्मण रसोई में पहुंचकर हमारी अदना सी दाल, आलू की सब्जी और चावल को धराशायी कर देती थी। बर्लिन वॉल के उस पार के बच्चों में हेनरी पंत मेरे खास दोस्त थे। उनकी बहनें ओल्गा और म्यूरियल जब अपनी जॉर्जेट की साड़ियों में अल्मोड़ा के बाजार में चहलकदमी करती थी तो हम लोग रश्क से करीब करीब मर ही जाते थे।
आइरीन पंत की पढ़ाई पहले लखनऊ के लालबाग स्कूल और फिर मशहूर आईटी कॉलेज में हुई। उनकी मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली से मिलने की भी एक दिलचस्प कहानी है।
बिहार में बाढ़ आई हुई थी और स्टूडेंट्स ने सोचा कि एक हम कुछ कार्यक्रम करें और टिकट बेचें, तो ये गई वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली गई और इत्तेफाक से दरवाजा किसने खोला? लियाकत अली खान ने। और उन्होंने उनको टिकट बेचने की कोशिश की तो पहले तो वो आनाकानी करने लगे क्योंकि कहने लगे लोग तो ऐसी पैसा इकट्ठा करने चले आते हैं, पर उन्होंने किसी तरह उनको कन्विंस किया कि नहीं, हमारा कॉज बिल्कुल जेन्युइन है। और एक के बजाय बोली उनसे कि आप दो टिकट ले लीजिए, आप सिर्फ एक टिकट क्यों ले रहे हैं, अगर आपके पास कोई कंपनी नहीं है तो मैं आके आपके साथ बैठ जाऊंगी।
फिर लियाकत अली ने न सिर्फ वो टिकट खरीदे बल्कि पहुंचे भी उस प्ले को देखने।
हाँ, पहुंचे थे, हालांकि इनका जो परफॉर्मेंस था, क्योंकि इनको म्यूजिक का बहुत शौक था, राणा जो है उन्होंने एक गाना भी गाया था, परफॉर्म किया था, पर उस वक्त तक शायद नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि उनका कोई और कमिटमेंट था, पर बाद में वो जरूर आए अपने एक मित्र के साथ।
यहाँ से जान पहचान का जो सिलसिला शुरू हुआ वो 16 अप्रैल 1933 में इन दोनों की शादी में परिणित हुआ। लियाकत अली न सिर्फ उनसे उम्र में 10 साल बड़े थे बल्कि शादीशुदा भी थे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो मुस्लिम लीग के राइजिंग स्टार थे और मोहम्मद अली जिन्ना के सबसे करीबी।
वो फोटोग्राफी के बहुत शौकीन थे, उनको मैकेनिकल चीज़ों में बहुत रुचि थी। सिगरेट लाइटर्स तो सुनते हैं, उनका इतना बड़ा कलेक्शन था कि वो सूटकेस भर के था। बचपन से उन्होंने संगीत सीखा था, तबला बजाते थे, गाने का शौक भी था। यू कैन से ही वाज अ वेल राउंडेड पर्सनालिटी।
लियाकत अली ने अपनी पत्नी के लिए दिल्ली के 8B Hardinge एवेन्यू पर एक बंगला बनवाया और उनके नाम पर उसका नाम रखा गुले राणा। पाकिस्तान जाने से पहले लियाकत अली खान ने वो बंगला पाकिस्तान को डोनेट कर दिया। इसे आज पाकिस्तान हाउस के नाम से जाना जाता है और वहां आज भी पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहते हैं। ये वो जगह है जहां से 1946 के बजट के कागजात सीधे संसद भवन ले जाए गए थे। उस समय लियाकत अली अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री हुआ करते थे।
जिन्ना साहब तो अपना बंगला जो है वो बेच के गए थे डालमिया को, पर लियाकत अली खान ने कहा ये मैं घर पाकिस्तान को डोनेट कर देता हूँ एज एन एम्बेसी, और बेगम राणा से कहा कि हम लोग कुछ नहीं ले जाएंगे, जो चीज़ है यहाँ पर वैसी ही रहेगी। आखिर को बोली कि ये जो छोटा सा कालीन है ये मेरी माँ का था, तो इसको मैं ले जाना चाहूँगी।
अगस्त 1947 में लियाकत अली और राणा लियाकत अली ने अपने दो बेटों अशरफ और अकबर के साथ दिल्ली के वेलिंगटन हवाई अड्डे से एक डकोटा विमान में कराची के लिए उड़ान भरी। पाकिस्तान में लियाकत अली वहां के पहले प्रधानमंत्री बने और राणा फर्स्ट लेडी। उन्हें लियाकत ने अपने मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक और महिला मंत्री के रूप में जगह दी। लेकिन अभी 4 साल ही बीते थे कि लियाकत अली खां की रावलपिंडी में हत्या कर दी गई। द बेगम पुस्तक की सह लेखिका तहमीना अजीज अयूब बताती हैं।
शुरू में तो वो बहुत परेशान थी, घबराई भी थोड़ा सा कि अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि कोई फाइनेंशियल या प्रॉपर्टी एसेट्स उनके हस्बैंड उनके लिए छोड़ के नहीं गए, बैंक में शायद तकरीबन 300 रुपए थे। अब उन्होंने कहा कि बच्चे भी पालने हैं, उनको पढ़ाना भी है, कुछ ऐसे दोस्त थे फिलैंथ्रोपिस्ट दोस्त जिन्होंने आगे आके उनको थोड़ी सी मदद की, और फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी सोचा कि हाँ इसको वी ओ दिस मच दैट वी हैव टू हेल्प हर बिकॉज शी इज नाउ अ विडो, तो उन्होंने फिर उनको एक स्टाइपेंड एलोकेट कर दिया 2000 रुपए का माहवार। 3 साल के बाद 54 में उनको भेज दिया एज एनवॉय नेदरलैंड्स, तो उससे फिर उनका कुछ सहारा बना क्योंकि फिर बच्चों की तालीम का भी वो अलाउंस मिल जाता है एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई। उसके अलावा उन्होंने चूंकि अफवा ऑलरेडी ऑल पाकिस्तान वेमेन्स एसोसिएशन स्टार्ट कर दी थी 49 में, तो उसमें वो काफी इन्वॉल्व थी।
अपने राजदूत के कार्यकाल के दौरान वो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न गई और वहाँ भारत के पूर्व विदेश सचिव जगत मेहता के फ्लैट में रुकी, जो जमाने में स्विट्जरलैंड में भारत के जूनियर राजनयिक हुआ करते थे। जगत मेहता ने अपनी किताब नेगोशिएटिंग फॉर इंडिया रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स थ्रू डिप्लोमेसी में इसका जिक्र करते हुए लिखा है,
वो हमारे छोटे से फ्लैट में अपने 2 बच्चों और के माइल्स के साथ आकर रुकी, जबकि ब्रिटेन के राजदूत ने जो कि पाकिस्तान के दूत का काम भी देख रहे थे उन्हें अपने निवास पर रहने की दावत दी थी। आते ही वो बिना किसी तकल्लुफ के मेरी रसोई में घुस गई और तो और उन्होंने मेरे 2 छोटे बच्चों को अपने हाथों से नहलाया भी। कूटनीति के इतिहास में भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच इस तरह की दोस्ती का शायद ही ऐसा कोई और उदाहरण मिले।
कूटनीति के क्षेत्र में खासा नाम कमाने के बावजूद उनकी पाकिस्तान के तानाशाह अयूब खान से नहीं बनी और अयूब खान ने उन्हें तंग करने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी।
अयूब खान से उनकी नहीं बनती थी, अयूब खान ने उनको काफी तंग किया बिकॉज ही वांटेड हर टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन कैंपेन अगेंस्ट फातिमा जिन्ना जब वो लड़ रहे थे, तो इन्होंने कहा देखो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एम्बेसडर हूँ, मैं कैसे आके जलसों में खड़ी हो जाऊँ, मैं नहीं कर सकता। अयूब खान ने फिर उनको एक किस्म से रिवेंज के तौर पर उनको इटली से वापस बुला लिया। उसके बावजूद जब उन्होंने बहुत बड़ी एक अफवाह की कॉन्फ्रेंस की 1965 में, जब मिसेज अयूब खान फर्स्ट लेडी बन गई और वो बिल्कुल घर से निकलती नहीं थी, उन्होंने फिर भी उनको दावत दी कि आप आके इसमें चीफ गेस्ट रहेंगी। शी हैड दैट मैग्नानिमिटी ऑफ पर्सनालिटी, यू नो, कि उन्होंने फिर भी उनको इज्जत दी।
राणा लियाकत अली को उनकी सेवाओं के लिए पाकिस्तान के सबसे बड़े नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज से सम्मानित किया गया। उन्हें मादरे पाकिस्तान का खिताब भी मिला। राणा लियाकत अली को पाकिस्तान में महिलाओं के उत्थान के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान के दूसरे तानाशाह जनरल जियाउल हक से भी टक्कर ली।
बहुत ज्यादा रिप्रेसिव किस्म के लॉज ले आए थे औरतों के खिलाफ और ऐसे लॉज थे कि वो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल थे। हुदूर ऑर्डिनेंस, इट्स अबाउट मॉरल बिहेवियर। वो चाहते थे कि बस औरतों को किसी तरह रिस्ट्रिक्ट करना है। उसके अलावा वो जो था इस्लाम का 2 women are equal to 1 man, वो उन्होंने रीइंफोर्स किया कि कानून शहादत जो है, यू नो, अडल्ट्री की जो लॉ है कि यू हैव टू बी अ विटनेस टू अडल्ट्री एंड ओनली देन इट्स प्रूवन, सो इफ इट्स 2 men इट्स इनफ, बट इफ इट्स 4 women हैव टू से कि हाँ जी हमारी बहन को रेप हुआ था। इट बिकेम सो टफ, दे प्रोटेस्टेड दैट एंड मच लेटर इट वॉज रिपील्ड। तो फिर जियाउल हक ने चूंकि उनकी उम्र ऐसी थी और उनकी स्टैचर ऐसा था तो उनको जेल में नहीं डाला, लेकिन बहुत सी औरतों को उस जमाने में डाल दिया जेल में कि तुम लोग क्यों आवाज उठा रहे हो।
30 जून 1990 को राणा लियाकत अली ने अंतिम सांस ली। 1947 के बाद पाकिस्तान को अपना घर बनाने वाली राणा लियाकत अली फिर कभी अल्मोड़ा वापस नहीं गई, लेकिन अल्मोड़ा हमेशा उनके जहन में जिंदा रहा।
उनको वहाँ के खास जो खाना होता है पहाड़ का, गहत की दाल होती है और एक चटनी होती है, दाड़िम कहते हैं हम, एक तरह का जंगली अनार होता है, ये सब बहुत याद करती थी। और एक चीज़ मुझे मिली उनके यहाँ उनके पेपर्स के बीच में जिससे मुझे लगा कि इट वॉज सो पॉइग्नेंट। उन्होंने अपने भाई को बर्थडे पे एक टेलीग्राम भेजा था और उसमें उन्होंने नीचे लिखा था आई मिस अल्मोड़ा।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।
और अब अंत में सुर्खियां भूमिका राय के साथ।
BBC समाचार। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू एवं कश्मीर की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी ने जुमे की नमाज अदा की। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो भारत के अंदरूनी मसलों से दूर रहे। भारत के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी हिस्से में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनी है। उन्नाव रेप केस मामले में भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ दिल्ली के एक सेशन कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। BBC समाचार।
आज स्टूडियो संभाल रहे थे रवि। अब सभी साथियों के साथ सारिका सिंह को दीजिए इजाजत। अब मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 6:30 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।